किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। जो कहानी मैं आज आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे मित्र और कहानीकार कल्याण बनर्जी ने मेरे साथ साझा की थी। बहुत अच्छी लगी, सोचा आपको भी सुना दूं। तो आज सुनिए कल्याण बनर्जी द्वारा लिखी कहानी शकुनी। वाचन है निधि बासु का। भारतवर्ष में जन्म लेने का अपना एक अद्भुत आनंद है और सब सुविधाओं के साथ साथ हमारे पास एक ऐसी संपदा है जो दुनिया में कहीं नहीं है। वे हैं हमारे देश के दो महाकाव्य, रामायण और महाभारत। महाभारत रामायण से कुछ अधिक निकट लगती है हम लोगों को, क्योंकि आधुनिक है थोड़ी सी रामायण की तुलना में। महाभारत का जो विस्तार है उसकी ना तो कभी किसी ने कल्पना की ना कर पाएंगे। महाभारत की जो कहानियां हैं उनकी पृष्ठभूमि अधिकतर दो जगहों पर है, एक हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर आज के समय में उत्तर प्रदेश में मेरठ में है, जहां उस समय से जुड़े प्राचीन अवशेष भी मिले हैं। लेकिन इंद्रप्रस्थ के बारे में सटीक कोई प्रमाण नहीं मिला कि इंद्रप्रस्थ कहां है। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के आसपास है, कुछ कहते हैं पुराना किला, पर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। पर ये कहानी महाभारत के ही एक चरित्र के बारे में है। एक कल्पना है, सच्चाई भी हो सकती है, ठोस तौर पर कहना कठिन है। इसमें बहुत कठिन समस्याएं भी हैं और उनका समाधान भी है। चलिए कहानी में प्रवेश करते हैं। शीर्षक शकुनी। आज की ये कहानी गांधार राजपुत्र शकुनी के बारे में है। गांधार नरेश सुबल के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे छोटे थे शकुनी। बचपन में उनके साथ एक दुर्घटना घटी थी, खेल खेल में घुड़सवारी करते समय गिर गए थे। उसके बाद से ही उनका एक पांव बेकार हो गया था और वो ठीक से चल फिर नहीं पाते थे, थोड़ा लंगड़ाते हुए चलते थे। इसके अलावा वो एक राजकुमार की तरह लंबे चौड़े भी नहीं थे, सो शारीरिक मापदंड के हिसाब से उच्चता में कम थे, पर सबसे अधिक बुद्धिमान और 100 भाइयों में कनिष्ठ होने के कारण वे राज परिवार में सबके लाडले थे। इनकी एक बहन का नाम गांधारी। गांधारी के विषय में तो आप सब सुन ही चुके हैं, परंतु महाभारत के महाकाव्य में जो एक उपेक्षित या कहें निग्लेक्टेड चरित्र है वो है शकुनी। शकुनी की एक ऐसी छवि उभर कर आती है कि वो बहुत धूर्त है, चपल और बुद्धिमान भी, पर उसकी धूर्तता चपलता के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। कुरु नरेश ने जब गांधार राज्य पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर ली, उसके उपरांत उस समय के नियम के अनुसार उस राज्य की अर्थात गांधार राज्य की सारी संपत्ति, मवेशी, घोड़े इत्यादि जो कुछ भी था, सब कुछ कुरु राज के हाथ में आ गया। उसके बाद भीष्म के आदेश अनुसार गांधारी का विवाह संपन्न हुआ धृतराष्ट्र के साथ, जो कि जन्म से ही अंधे थे, कुछ देख नहीं पाते थे, पर राजपाट वही चला रहे थे। गांधारी ने पतिव्रता होने के नाते स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और एक अंधे का जीवन जीने लगी, और वो भी खुशी से। इसमें कोई क्रोध नहीं था, इससे कोई आपत्ति भी नहीं थी। अब थोड़ा सा चलिए चलते हैं इसी राज परिवार के राजमहल के बाहर। महल से थोड़ी दूर एक जेलनुमा संरचना है। ना वहां किसी को प्रवेश की अनुमति है, ना वहां से बाहर ही कोई जा सकता है। प्रहरी वहां खड़े रहते हैं। वहां कौन रह रहे हैं ये थोड़ा विचित्र है। कर यानी टैक्स ना दे पाने के कारण कुरुराज ने गांधार नरेश सुबल को और उनके 100 पुत्रों को उसी कारागार में बंदी बना रखा है। उनके ऊपर निरंतर एक दबाव बना हुआ है, क्योंकि एक प्रश्न उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आपने कहां कहां अपनी धन संपत्ति छिपा रखी है अपने गांधार राज्य में, वो बताइए। और अब तो बीच बीच में उनके ऊपर अत्याचार भी होने लगा है। पर सच तो ये है कि गांधार में धन उतना नहीं था। 100 पुत्र थे, गांधारी थीं, पर धन उतना अधिक नहीं था। उनकी सारी संपत्ति ले आने पर भी कुरुराज का कहना था कि आपने तो पूरा कर दिया ही नहीं। हम आप सबसे ये कहे देते हैं कि आने वाले दिनों में आपको बहुत भयानक दंड दिया जाएगा। अब भी समय है, यदि आप ये बता दें कि आपने अपनी गुप्त राजसी संपदा कहां छिपा रखी है, तो आपको क्षमा कर दिया जाएगा। गांधार राज ने पुनः वही बात दोहराई, जो था सब दे दिया और कुछ नहीं है हमारे पास। आप जो दंड उचित समझे दे सकते हैं, परंतु देने योग्य अब हमारे पास और कुछ नहीं है। हमने अपनी पुत्री को विवाह में आपको सौंप दिया, इसके उपरांत अब और कुछ भी नहीं बचा। उस युग में बेटियों को भी संपदा माना जाता था। तब एक सुबह प्रहरी ने आकर बहुत ऊंचे स्वर में एक घोषणा की, एक ऐसी घोषणा जो सुनने में बहुत साधारण है, किंतु उसे एक प्रकार से महाभारत की नींव माना जा सकता है। प्रहरी ने आकर ये कहा था कि कल से मैं आपके लिए भोजन लाऊंगा और वो आप सबको ग्रहण करना होगा। गांधार राज्य और उनके शतपुत्रों ने इस घोषणा का बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। तब प्रहरी ने आगे बताया, नहीं, इतना उल्लसित होने की आवश्यकता नहीं। भोजन अवश्य आएगा, परंतु ठीक उतना जितना एक जन के भोजन के लिए पर्याप्त है। आप सबको उसी में से खाना खाना होगा। गांधार नरेश और उनके 100 पुत्र एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शकुनी को ये सब बातें समझ में नहीं आईं, क्योंकि वो सब में सबसे छोटे थे और पांव में समस्या होने के कारण उनके सभी बड़े भाई उनकी देखभाल भी करते थे। लेकिन गांधार राज को समझते देर ना लगी कि क्या होने जा रहा है। रोते रोते उन्होंने प्रहरी के पांव पकड़ लिए, बोले, ऐसा मत कीजिए, हम सब मर जाएंगे। प्रहरी ने झटके से अपना पांव छुड़ाते हुए कहा कि यदि इतना कष्ट हो रहा है आपको, तो महारानी से बात कीजिए, वे महाराज से बात करके आप सभी के लिए भोजन भिजवा देंगी, जैसा अभी तक होता आया है। इस बात से मानसिक रूप से बहुत आहत हुए थे गांधार राज। उनके सारे पुत्रों ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, एक थाली आ जाए, हम उसी में से मिल बांट के खाएंगे। अगली सुबह प्रहरी ने आके मात्र एक थाल उस कारागार में रख दिया। एक व्यक्ति जितना खा सकता है, उससे कुछ अधिक ही भोजन था उसमें। समस्या यहां शुरू हुई। सारे भाई आके उस थाल पर टूट पड़े। नन्ना शकुनी शारीरिक रूप से इतना दुर्बल था कि वो टूट नहीं पाया, पीछे रह गया। उसके पिता गांधार राज भी चुप हो गए। सब जन जो एक साथ चावल उठाने गए, किसी के मुंह में एक कण आया, किसी के मुंह में वो भी नहीं, कुछ कण धरती पर बिखर गए। इतना सब देखकर गांधार राज रोने लगे। किसी के पास कोई शब्द नहीं है। अगली सुबह भूख चरम सीमा पर थी। उस समय प्रहरी फिर एक थाल भर भोजन ले आया, पर्याप्त, लेकिन उतना ही जितना एक जन पेट भरकर खा सके, उससे अधिक नहीं। फिर वही हुआ, छिन्न भिन्न हो गया वो खाना, एक निवाला भी किसी के मुंह में ना आया। कुछ देर बाद थाल वापस ले गया प्रहरी। गांधार नरेश चुपचाप बैठे थे, जैसे एक देवर्षि बैठते हैं। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब मेरे सामने विराजमान हो जाइए, हम एक आदेश देने जा रहे हैं। भूलिए मत, हम आज भी गांधार राज हैं और आप सब हमारी संतानें हैं। और ये भी मत भूलिए कि आपकी बहन इसी राज परिवार की बहू है। इसके पश्चात गांधार राज ने जो कहा, जो आदेश दिया, वो मृत्यु समान था सबके लिए। पहला आदेश ये था, मेरे पुत्रगणों, ये जो थाल हमने दो दिन नष्ट कर दिया, हम कुछ भी खा नहीं पाए, एक कण भी मुंह में नहीं आया, ये हम अब की बार नहीं करेंगे। प्रहरी को दिखाने के लिए हम सब उस थाल को घेर कर बैठ जाएंगे, लेकिन हम सब में से कोई एक ही जन उस थाल में से भोजन करेगा, क्योंकि एक जन को जीवित रहना है प्रतिशोध लेने के लिए। अब हमें यह तय करना है कि कौन होगा वो जो ये प्रतिशोध ले सकता है। सारे पुत्र चिल्लाने लगे, मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं प्रतिशोध लेना चाहता हूं। तब गांधार नरेश ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, गणितक नियम से चलें तो शकुनी हम सब में से सबसे छोटा है, इस नाते हम में से सबसे अधिक लंबे समय तक जीवित रहने की संभावना शकुनी की है। मेरा प्रस्ताव ये है कि हम सब शकुनी को खाना खिलाएंगे। जीवित रहने के लिए हम सब मिलकर उसको एक अवसर देंगे। असंतुष्ट बच्चों ने अपने पिता की बात मान ली। इसके बाद का दृश्य अकल्पनीय है। सोचिए, 99 बच्चे पास पास गोल घेरा बनाकर बैठे हैं और उन सब के बीच में शकुनी अकेले बैठे खाना खा रहे हैं। वो कातर दृष्टि से चुपचाप अपने भाइयों को भी देख रहे हैं, जैसे उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हूं कि भाइयों, मुझे क्षमा कर देना। क्यों? क्योंकि शकुनी को जीवित रहना है, शकुनी को प्रतिशोध लेना है। ये क्रम प्रतिदिन चलता रहा। प्रहरी ये समझते रहे कि खाना इधर उधर गिर रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, पर ऐसा नहीं था। सारे बच्चे गोला बनाकर बैठे थे और शकुनी को खाना खिला रहे थे। कोई मनुष्य कितने दिन तक भूखा रह सकता है? शकुनी के भाई एक एक करके परलोक सिधारने लगे, कभी एक कभी दो, और हर दिन रोते हुए शकुनी ये खाना खा रहे थे। एक दिन बहुत दुखद घटना घटी, एक साथ 5 भाई मर गए। शकुनी से भोजन नहीं किया जा रहा था, परंतु शकुनी के पिताजी यानी गांधार राज ने बहुत गंभीरता से उनको बताया कि बेटा, तुम्हें जीवित रहना है, हम सब मर जाएंगे पर तुम जीवित रहोगे, तब जाकर प्रतिशोध ले पाओगे।
पिताजी, मैं ये भोजन कल से ग्रहण नहीं करूंगा, मेरे भाई मर रहे हैं और मैं मूर्खों की तरह भोजन किए जा रहा हूं।
इसके पीछे एक कारण है पुत्र, तुमको भोजन ग्रहण करना ही पड़ेगा, प्रतिशोध लेना है। इसके कुछ दिन पश्चात गांधार राज दुर्बलता से सूखकर कांटा हो गए थे। उन्होंने शकुनी को अपने पास बुलाया। ये अब 100 भाइयों में सबसे छोटा और सबका लाडला भाई शकुनी नहीं है, अपितु वो शकुनी है जिसका तन मन दिन प्रतिदिन अपने भाइयों से बिछड़ने के दुख से तड़पता रहता है। आंख के आंसू सूखकर अब मन में विध्वंसक आक्रोश का रूप लेने लगे हैं। जो बचे खुचे भाई हैं वो वहीं लेटे हुए हैं, ऐसे जैसे मृत्यु के आने की बाट जो रहे हों। गांधार राज ने शकुनी को बताया कि बेटा, हम आपको 2 बातें बताना चाहते हैं और एक प्रतिज्ञा आपसे लेना चाहते हैं। सर्वप्रथम आपसे ये प्रतिज्ञा लेना चाहते हैं कि आप कहिए कि आप कभी भी कुरुवंश को क्षमा नहीं करेंगे, प्रतिशोध लेंगे। हाथ जोड़कर रोते हुए शकुनी ने कहा,
पिताजी ये मेरी प्रतिज्ञा नहीं है, ये मेरा धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक हर क्षण प्रतिशोध की अग्नि में अपने आप को जलाता रहूंगा और अवसर प्राप्त होते ही मैं आक्रमण करूंगा। पर हे पिता, आप ये भी बताइए कि मेरा शरीर छोटा सा है, एक पांव में दोष है, मैं कैसे कुरुवंश पर आक्रमण करूं?
तब गांधार राज ने बताया, बेटा जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे हमारा शरीर उतना नहीं होता जितना हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, ये सारे मिलकर हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए।
पिताजी हमें ये बताइए कि हम क्या कर सकते हैं।
आज नहीं पुत्र, मुझे नहीं लगता कि मृत्यु आज मेरे निकट आएगी। आगामी एक दो दिनों में हम आपको ये बता देंगे कि आपको क्या करना होगा। किसी प्रकार वो दुर्दांत समय कट रहा था। अब तक शकुनी के अनेक भाई जा चुके थे और आज ऐसा लग रहा था कि गांधार राज भी और अधिक जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने शकुनी से कहा, बेटा भोजन थाल आते ही सबसे पहले भोजन करना, उसके बाद मैं तुम्हारी गोद में लेटकर प्राण त्यागना चाहता हूं। पर ऐसा ना हो सका। भोजन आने से पहले ही गांधार राज, जो मरणासन्न धरती पर लेटे थे, उनको देखकर शकुनी को लगा कि अब उनका अंत निकट है। शकुनी ने पिता का सर अपनी गोद में ले लिया और उनके कान के समीप जाकर धीरे से कहा, पिताजी आप कुछ कहने वाले थे ना, बता दीजिए ना। बहुत कष्ट हो रहा था गांधार राज को बात करने में, परंतु शरीर की सारी बची खुची शक्ति एकत्रित करके उन्होंने बताया, बेटा प्रतिज्ञा तो कर ली आपने, पर अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप राजपुत्र शकुनी कुरु वंश का नाश कर सकेंगे। मेरी मृत्यु के पश्चात आप अपने हाथों से मेरी छाती की जितनी हड्डियां हैं वे सब निकाल लेंगे, क्योंकि मैं एक दैवी वरदान द्वारा समृद्ध हूं। मेरे शरीर की जो हड्डियां होंगी उनकी शक्ति एक अद्भुत कार्य करेगी और वही होगा आपके प्रतिशोध का पथ। इसके पश्चात उन्होंने शकुनी के सर पर हाथ रखा और उनकी दोनों भवों के बीच अपना अंगूठा रखकर कहा, पुत्र सुनो और समझो, यदि ना समझ पाओ तो पूछ लेना, मैं तुम्हें एक रहस्य बताने जा रहा हूं, वही तुम्हारे प्रतिशोध का पथ है। मेरी छाती की जो हड्डियां निकलेंगी उनको तुम घिस घिस के चौसर के पासे बनाना। मुझे ये दैवी आशीर्वाद है कि मैं उन्हीं पासों में विराजमान रहूंगा, परंतु जब तक तुम नहीं बोलोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
पिताजी पहेली मत बुझाइए, हाँ मैं ऐसा कर लूंगा, पर ये बताइए कि इससे कुरुवंश का सर्वनाश कैसे होगा?
पुत्र, तुम्हें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि उनको किस प्रकार हानि पहुंचेगी। तुम्हें बस केवल एक काम करना है। रिश्तेदारी में तुम कौरव राजकुमारों के मामा लगोगे। इन युवराजों में जो सबसे बड़ा होगा, तुम सदैव इस प्रकार उसके निकट रहोगे, जिससे तुम उसका विश्वास पात्र बन जाओ और वो तुम पर निर्भर हो जाए। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि चौसर का खेल खेला जाएगा। उस समय तुम दौड़ कर जाकर ये पासे ले आना और कहना कि भांजे, इससे खेलो।
जी पिताजी, समझ गया। और मैं ऐसे ही कौरवों को हराऊंगा?
नहीं, आप उनको जिताएंगे। ये कहके गांधार राज चल बसे। इसके आगे की कहानी आप सबको पता है, पर महाभारत में ये जो छोटी सी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन रह गया था, इसीलिए आपके बीच ये लाया हूं। आप सुन रहे थे कल्याण बनर्जी द्वारा लिखी कहानी शकुनी। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।